Hare Krishna, our great fortune to hear His Grace Amoghlila Prabhuji on a very special lecture. This is on the disappearance day of Srila Madhvacharya ji, recorded on 28th of January 2015 at ISKCON Dwarka, New Delhi. Hare Krishna.
Madhvacharya sthane. मध्वाचार्य के स्थान पर आइला आए, यहाँ जहाँ तत्ववादी नामक दार्शनिक उडुपी नामक स्थान पर कृष्णा भगवान कृष्ण के विग्रह देखकर तहा वहाँ हैला हो गए, प्रेम उन्मादी प्रेम उन्मत्त। अनुवाद। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडुपी पर पहुंचे, जहां तत्ववादी के नाम से जाने जाने वाले दार्शनिक रहते थे। वे वहां भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह को देखकर वहां विहल हो उठे। तात्पर्य, श्रीपाद मध्वाचार्य का जन्म उडुपी के निकट हुआ, जो दक्षिण भारत के दक्षिण कन्नर जिले में सहरादी के पश्चिम में स्थित है। ये दक्षिण कन्नर प्रांत का मुख्य शहर है और उडुपी से दक्षिण की ओर स्थित मंगलोर शहर के निकट है। उडुपी शहर के निकट पाजुका क्षेत्र है, जहां मध्वाचार्य ने शिवाली ब्राह्मण वंश में मध्यगेह भट्ट के पुत्र के रूप में 1040 स्काब्द यानी कि 1118 ईस्वी में जन्म लिया। कुछ लोगों के मतानुसार उनका जन्म 1160 स्काब्द यानी 1238 में हुआ। बचपन में मध्वाचार्य वासुदेव कहलाते थे और उनके विषय में कुछ अद्भुत कहानियां कही जाती हैं। कहा जाता है कि उनके पिता पर अधिक ऋण था और मध्वाचार्य ने इमली के बीजों को सिक्कों में बदलकर ऋण चुकाया। अभी वे 5 ही वर्ष के थे, उन्होंने जनेऊ संस्कार किया। मणिमान नामक एक असुर सांप के रूप में उनके घर के पास रहता था, जिसे मध्वाचार्य ने 5 वर्ष की आयु में अपने बाएं पांव के अंगूठे से मार डाला। जब उनकी माता चिंतित होती तो वह एक छलांग में ही उनके सामने प्रकट हो जाते। वह बचपन से ही प्रकांड विद्वान थे और उनके पिता के न चाहने पर भी उन्होंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। अच्युत प्रेष्ठ से संन्यास लेने के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पड़ा। संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने श्रृंगेरी मठ के प्रमुख विद्याशंकर से शास्त्रार्थ किया। विद्याशंकर उनकी उपस्थिति में वास्तव में बौना हो गए। मध्वाचार्य सत्य तीर्थ के साथ बद्रिकाश्रम गए। वहां पर व्यास देव से उनकी भेंट हुई और उन्होंने भगवत गीता पर अपना भाष्य उन्हें सुनाया। इस प्रकार से व्यास देव के अध्ययन करके प्रकांड पंडित बन गए। बद्रिकाश्रम से आनंद मठ आने के समय तक मध्वाचार्य ने भगवत गीता पर अपना भाष्य पूरा कर लिया था। उनके साथी सत्य तीर्थ ने समूचा भाष्य लिख दिया। बद्रिकाश्रम से लौटने पर मध्वाचार्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित गंजाम गए। यहां उनकी भेंट शोभन भट्ट तथा स्वामी शास्त्री नाम के 2 पंडितों से हुई। बाद में दोनों मध्वाचार्य गुरु शिष्य परंपरा में पद्मनाभ तीर्थ तथा नरहरि तीर्थ के नाम से विख्यात हुए। उडुपी लौटने पर वह कभी कभी सागर के में स्नान करते। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने एक स्तुति की रचना की, जो 5 अध्यायों में है। एक बार जब समुद्र के तट पर बैठे हुए वे भगवान श्री कृष्ण में ध्यान में मग्न थे, तब उन्होंने देखा कि द्वारका के लिए सामग्री ले जाने वाला एक मालवाही जहाज संकट में है। उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे वह जहाज समुद्र के तट पर जा लगा और इस तरह वह बच गया। उस जहाज के मालिक ने उन्हें भेंट स्वरूप कुछ देना चाहा, किंतु उन्होंने मात्र कुछ गोपी चंदन लेना स्वीकार किया। जब चंदन का एक बड़ा ढीला उनके पास लाया जा रहा था तो वह बीच से ही टूट गया और उसमें से भगवान श्री कृष्ण का एक बड़ा अर्चा विग्रह निकला। अर्चा विग्रह एक हाथ में डंडा और दूसरे में खाद्य पदार्थ लिए हुए था। जो ही मध्वाचार्य ने इस रूप में श्री कृष्ण का अर्चा विग्रह प्राप्त किया, उन्होंने एक स्तुति लिखी। यह अर्चा विग्रह इतना भारी था कि 30 व्यक्ति मिलकर भी इसे उठा नहीं सकते थे। फिर भी मध्वाचार्य ने स्वयं उस अर्चा विग्रह को उडुपी लाए। मध्वाचार्य के 8 सन्यासी शिष्य उनके 8 मठों के आचार्य बने। मध्वाचार्य के द्वारा स्थापित विधि के अनुसार उडुपी में कृष्ण की पूजा ऐसे इस समय भी की जाती है। तब मध्वाचार्य दूसरी बार बद्रिकाश्रम गए। जब वे महाराष्ट्र से होकर जा रहे थे तब एक स्थानीय राजा जनता के कारण हेतु एक विशाल सरोवर खुदवा रहा था। क्योंकि मध्वाचार्य अपने शिष्यों के लिए के साथ इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस खुदाई में अपनी सहायता में उनकी सहायता करनी पड़ी। कुछ समय के बाद मध्वाचार्य ने राजा से भेंट की और उन्हें इस कार्य में लगाया और अपने शिष्यों के साथ वह आगे बढ़ गए। गंगा प्रदेश में प्राय हिंदुओं तथा मुसलमानों में झगड़े होते रहते थे। हिंदू नदी के एक ओर थे मुसलमान और दूसरी ओर थे एक ओर थे हिंदू और दूसरी ओर थे मुसलमान। सांप्रदायिक तनाव के कारण नदी पार करने के लिए कोई नाव उपलब्ध नहीं थी। मुसलमान सैनिक हमेशा यात्रियों को दूसरे किनारे आने से रोकते थे, किंतु मध्वाचार्य ने इन सैनिकों की परवाह नहीं की। अतः इसके बावजूद जब वह नदी पार करके दूसरी ओर पहुंचे तो सैनिकों से मिले तो उन्हें राजा के पास लाया गया। मुस्लिम राजा उसे बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें एक राज्य तथा कुछ धन देना चाहा, किंतु मध्वाचार्य ने उसे लेने से मना कर दिया। मार्ग पर जाते समय कुछ डाकुओं ने उन पर आक्रमण किया, किंतु अपनी शारीरिक बल पर उन्होंने उन्हें उन सबको मार डाला। जब उनके साथी सत्यतीर्थ पर एक बाघ ने आक्रमण किया तो मध्वाचार्य ने अपने बल से दोनों को अलग किया। जब वे व्यासदेव से मिले तो उनसे उन्हें अष्टमूर्ति नामक शालिग्राम शिला प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने महाभारत का संक्षिप्तीकरण भी किया। मध्वाचार्य की भगवत भक्ति तथा उनका प्रकांड पांडित्य भारत भर में विख्यात हो गया। फलस्वरूप शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ के स्वामी कुछ बेचैन हो उठे। उस समय शंकराचार्य के अनुयायी मध्वाचार्य की उभरती शक्ति से डरकर वे उनके शिष्यों को नाना प्रकार से सताने लगे। वे ये सिद्ध करने का प्रयास करते कि मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। शंकराचार्य के मायावाद दर्शन का एक अनुयायी उनका इसका नाम पुंडरीकपुरी था मध्वाचार्य से शास्त्रार्थ करने आया। कहा जाता है कि मध्वाचार्य की सारी पुस्तकें चुरा ली गई थी, किंतु बाद में कुंभ के शासक राजा जय सिंह की सहायता से वह ढूंढ ली गई थी। शास्त्रार्थ में पुंडरीकपुरी मध्वाचार्य से परास्त हुए। विष्णु मंगल निवासी का त्रिविक्रमाचार्य नामक एक महापुरुष मध्वाचार्य का शिष्य बन गया और बाद में उनके पुत्र नारायणाचार्य ने श्री मध्वा विजय की रचना की। त्रिविक्रमाचार्य के देहांत के बाद नारायणाचार्य की भेंट भाई के सन्यास के छोटे भाई से सन्यास ले लिया और वह विष्णु तीर्थ कहलाए। उस समय ये ख्याति फैली थी कि पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्य की शारीरिक शक्ति का कोई सीमा नहीं है। तभी कंडझरी नाम के एक व्यक्ति था जिसके लिए प्रसिद्ध था कि उसके पास 30 व्यक्तियों की बराबर शक्ति है। मध्वाचार्य ने अपने पांव के अंगूठे को जमीन पर रखकर उस व्यक्ति से कहा कि अंगूठे को हटा दे, किंतु वह बलशाली व्यक्ति उनके प्रयासों के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाया। श्री मध्वाचार्य ने 80 वर्ष की आयु में ऐत्रेय उपनिषद का भाष्य लिखते हुए इस भौतिक संसार से विदा ली। मध्वाचार्य के विषय में अधिक जानकारी के लिए नारायण आचार्य विरचित मध्वा विजय ग्रंथ देखना चाहिए। मध्व संप्रदाय के आचार्यों में उडुपी को प्रधान केंद्र बनाया और यहाँ के मठ का नाम उत्तराड़ी मठ प्रसिद्ध हुआ। मध्व संप्रदाय के विभिन्न केंद्रों के नाम उडुपी में प्राप्त हो सकते हैं, जिनको चलाने वाले हैं विष्णु तीर्थ, जनार्दन तीर्थ, वामन तीर्थ, नरसिंह तीर्थ, उपेंद्र तीर्थ, ऋषिकेश तीर्थ, राम तीर्थ, अक्षोभ्य तीर्थ। मध्वाचार्य संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा इस प्रकार है। तिथियां काब्द में जन्म की तिथियां हैं और ईसवी के सन के लिए 78 वर्ष जोड़िए। हंस परमात्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, सनकादि, दुर्वासा, ज्ञान निधि, ये गुरु परंपरा है। गरुड़ वाहन, कैवल्य तीर्थ, ज्ञानेश तीर्थ, पर तीर्थ, सत्य प्रज्ञ तीर्थ, प्राज्ञ तीर्थ, अच्युत प्रेक्षाचार्य तीर्थ, श्री मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, माध्वा, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, विद्याधिराज, कवींद्र, वाघीश, रामचंद्र, विद्यानिधि, श्री रघुनाथ, रघुवर्य, रघुतम, वेदव्यास, विद्याधीश, वेदनिधि, सत्यव्रत, सत्यनिधि, सत्यनाथ, सत्यभिनव, सत्यपूर्ण, सत्यविजय, सत्यप्रिय, सत्यबोध, सत्यधन, सत्यसन, सत्यवर, सत्यधर्म, सत्यसंकल्प, सत्यसंतुष्ट, सत्यपरायण, सत्यकाम, सत्येष्ट, सत्यपराक्रम, सत्यधीर तीर्थ। 16वें आचार्य विद्याराज तीर्थ के बाद दूसरी गुरु परंपरा चली, जिसमें राजेंद्र तीर्थ, विजय ध्वज, पुरुषोत्तम, सुब्रह्मण्य तथा व्यास राय सम्मिलित हैं। 19वें आचार्य रामचंद्र तीर्थ की भी अन्य गुरु शिष्य परंपरा चली, जिसमें विभु, धेंद्र, जीता मित्र, रघुनंदन, सुरेंद्र, विजेंद्र, सुधींद्र तथा राघवेंद्र तीर्थ सम्मिलित हैं। आज तक उड़ुपी मठ में अन्य 14 माधव तीर्थ सन्यासी हुए। जैसा बताया जाता है कि उड़ुपी दक्षिण कन्नड़ में मंगलोर से लगभग 36 मील उत्तर में स्थित है, ये समुद्र के निकट है। इस तात्पर्य की अधिक जानकारी के लिए साउथ कनाडा मैनुअल तथा बॉम्बे गजट में उपलब्ध है। प्रभुपाद जी ने संक्षिप्त में पूरी इतनी सुंदर लीलाएं बताई हैं, तो बहुत ही जबरदस्त तात्पर्य है, तो आप नोट कर सकते हैं। ये चैप्टर 9 है, वर्स 245 है, मध्य लीला का, चैतन्य चरितामृत का। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि श्री मध्वाचार्य जी का तिरुभाव दिवस है आज। और श्री मध्वाचार्य मतलब ऐसी पर्सनैलिटी, बहुत ही आश्चर्यजनक पर्सनैलिटी, क्योंकि इनका जो लीलाएं हैं वो चमत्कार से भरी हुई हैं। जब तक किसी लीला में चमत्कार ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है हमें समझना कि लीला है ना। जैसे प्रभुपाद जी छोटे थे, उनका कचौड़ी खाना, वो समझ में आता है कि लीला है, चमत्कार होना चाहिए कुछ। तो हालांकि प्रभुपाद जी बहुत सारे चमत्कार किए, अगर प्रभुपाद जी के चमत्कार वाली लीलाएं की बात करें तो अभी उसमें पूरा सेशन निकल जाएगा। बहुत सारी लीलाएं जो कि चमत्कार है, एक्चुअली मैजिकल है वो। स्पेशली उनके जो जादूगरों के साथ जो इंटरेक्शन हुई हैं, और किस तरह से जादूगरों की जो जादू की पावर थी वो प्रभुपाद जी ने ली, वो उसमें वो एक डिफरेंट सेशन है, वो कभी किसी और दिन बताएंगे प्रभुपाद जी का कि किस तरह से प्रभुपाद जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। लेकिन मध्वाचार्य जी का जो है, इस तरह से उनका जीवन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ही अद्वितीय है। और इनके बारे में जो मध्वा संप्रदाय है उसमें बताया जाता है कि किस तरह से इनका आना बहुत विशेष था। तो इनका आना जो है एक स्पिरिचुअल षड्यंत्र का हिस्सा था, एक आध्यात्मिक षड्यंत्र था जो कि भगवान के द्वारा ही रचा गया मनुष्य सभ्यता का उत्थान करने के लिए। लेकिन सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे, क्योंकि अगर हमें ऊपर जाना है तो सबसे पहले सबसे नीचे की सीढ़ी पे जाएंगे। जय श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, श्री जगन्नाथ सुभद्रा मैया की जय, गिरिराज गोवर्धन जी की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम सबने सुना हुआ है कि श्रृंगी ने जब श्राप दिया, श्रृंगी ने श्राप देने के बाद ब्राह्मणों का पतन हुआ, ब्राह्मणों के पतन के बाद तो वास्तव में सब कुछ जो है, जब सनातन धर्म से सबका विश्वास उठ गया तो पाप के कार्य शुरू हो गए। पाप के कार्य शुरू हुए तो पाप के कार्यों को रोकने के लिए, जो कि शास्त्रों के नाम पर पाप चल रहे थे, उनको रोकने के लिए बुद्धिज्म आया। तो हम माइनस में चल रहे थे, -3, -2, -1, इसको जीरो पे लाना बड़ा जरूरी है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 खेलेंगे, लेकिन अभी इसको माइनस से जीरो पे लाना बहुत जरूरी है। इसीलिए 2500 साल पहले आए महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध ने का सिद्धांत था शून्यवाद। शून्यवाद, एवरीथिंग अल्टीमेटली बनना क्या है, शून्य, जीरो। तो -1 से लेकर आए जीरो पे महात्मा बुद्ध। लेकिन कहानी यहां थोड़ी खत्म हो गई है, तो शुरुआत हुई है। तो इसके बाद हमें जीरो के बाद कौन सा नंबर आता है? वन. तो इसके लिए आया श्रीपा शंकराचार्य और उन्होंने सिद्धांत दिया केवल अद्वैतवाद, दैट एवरीथिंग इज वन, सब कुछ एक है, भगवान प्रकृति जीव सब कुछ एक है. लेकिन वन के बाद क्या आता है? टू. हालांकि इसके बीच में 1.5 भी आया और ये 1.5 था रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत, जिसमें कि जीवात्माओं को जो है भगवान के साथ एक ही बताया गया लेकिन उनकी विशेषता के रूप में अलग बताया गया बस. तो 1.5. लेकिन मध्वाचार्य 2. इसलिए उनका जो फोटो भी है यहां पर तो ऐसी है, पर यूजली जो मध्वाचार्य जी की फोटोग्राफ है वो ऐसी होती है 2, मतलब प्रकृति जीवात्मा भगवान अलग अलग है. जीवात्मा जीवात्मा हर एक जीवात्मा यूनिक है, जीवात्माओं में नथिंग इज कॉमन. प्रकृति और जीवात्मा अलग अलग है, प्रकृति और भगवान अलग अलग है और जीवात्मा और भगवान अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है. मतलब मायावाद का एकदम डायमेट्रिकली ओपोजिट, कुछ भी कॉमन नहीं है, एवरीथिंग इज अलग अलग, द्वैत. इसलिए उनके सिद्धांत का नाम है द्वैतवाद, द्वैतवाद. तो ये लोग कहलाते जो अद्वैतवादी थे वो कहलाते थे मायावादी. इन्होंने अपने फॉलोअर्स को नाम दिया तत्ववादी, मध्वाचार्य जी ने. तो इनका आने का बहुत विशेष कारण था. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदायों में से हर संप्रदाय में से ना विशेषताएं ली हैं, और इस तरह से जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है ये क्रीम ऑफ द क्रीम है, चारों संप्रदाय का बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिया उन्होंने. और इस चैतन्य महाप्रभु ने ये जो गौड़ी मध्व संप्रदाय है हमारा चैतन्य महाप्रभु का, इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमें मिला है. तो श्रीपाद मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से दो चीजें ली, दो जो भक्ति क्रियाएं थी जो कि बहुत ही स्ट्रांग थी और बहुत ही सुंदर तरीके से इसके अंदर प्रस्तुत थी. एक तो था मायावाद का खंडन और दूसरा श्री विग्रह सेवा. मतलब श्री विग्रह सेवा का इतना ऊंचा स्टैंडर्ड है मध्वाचार्य संप्रदाय में, बहुत ही ऊंचा स्टैंडर्ड, आज भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है. अगर हम वहां पर जाएं, वहां पर जो सन्यासी बनता है या जो मठ के जो आचार्य बनते हैं जिनके नाम अभी हमने पढ़े थे, नॉट दैट कि कोई भी व्यक्ति वहां आचार्य बन सकता है. जो बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते हुए उसकी जो नाड़ी होती है अगर वो जनेऊ की तरह लिपटी हुई होती है तो ऐसा बच्चा जो है वो ही आगे जाके आचार्य बनता है. और ऐसे माता पिता देखते हैं कि भाई हमारे बच्चे का जो जो नाड़ी है वो जनेऊ की तरह लिपटी हुई है, तो वो अपने बच्चे को मठ में दे देते हैं कि ये वास्तव में आचार्य है इसीलिए ये जनेऊ की तरह लिपटा हुआ है, और वो वहां देता है. और फिर बचपन से ही उसकी ट्रेनिंग होती है, और इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग है मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में कि वहां सन्यासियों का ऑलमोस्ट कभी फॉल डाउन नहीं होता. मतलब अगर मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में कभी फॉल डाउन हुआ है तो 2-4 बार कभी किसी का मुश्किल से हुआ होगा, वो भी किसी वजह से, मतलब एक्सीडेंटली. लेकिन इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग, बहुत जबरदस्त. तो मध्वाचार्य जी के संप्रदाय से ही दो भक्ति क्रियाएं श्री चैतन्य महाप्रभु ने ली, एक था श्री विग्रह सेवा और दूसरा था मायावाद का खंडन. और मायावाद का खंडन जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने. तो मध्वाचार्य जी का किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे संप्रदाय में, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. कुछ जो इनकी लीलाएं हैं इनकी वो चर्चा करते हैं हम. इनका आना जो था बहुत ही विशेष था, क्योंकि सारे के सारे जो भगवान के भक्त थे मायावाद के प्रचार के कारण सबके साथ त्राही त्राही कर रहे थे. क्योंकि हालांकि श्रीपाद शंकराचार्य सिर्फ 32 साल रहे, लेकिन 32 साल के अंदर में जो उन्होंने प्रचार किया वो इतना हैवी ड्यूटी प्रचार था, मतलब उसका आज भी हम देख रहे हैं, आज भी झेलते हैं हम लोग मायावादियों को. मतलब इतना पावरफुल प्रचार शंकराचार्य जी का. तो इसीलिए, और लेकिन उनके बारे में क्योंकि पद्म पुराण प्रेडिक्टेड है कि किस तरह से भगवान शिव जी जो है अवतार लेते हैं कलयुग में शंकराचार्य जी के रूप में, और वो मायावाद दर्शन प्रस्तुत करते हैं. अब इसको ठीक करने के लिए, इसको फर्दर इवॉल्व करने के लिए, मतलब इसको भक्ति की ओर लेके जाने के लिए और आचार्यों की आवश्यकता पड़ी. तो मध्वाचार्य जी का आना बड़ा विशेष था. क्यों? क्योंकि सबके सब जो भक्त थे ये भगवान के पास गए, देवी देवताएं गए, कुछ ऐसे जो महान जीवात्माएं थी ये भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान आप कुछ करिए, आप कुछ करिए. भगवान विष्णु से प्रार्थना की. तो भगवान विष्णु जो है जो उनके मुख्य देवी देवता हैं, उनके भक्त हैं, उनके पास गए और उनमें से वो वायु के पास रुके और वायु को बोला कि तुम्हें जाकर जो है भक्ति के सिद्धांतों का प्रचार करना होगा. और फिर वायु ने भगवान को प्रणाम किया और ये वायु के अवतार हुए बाद जाके श्रीपाद मध्वाचार्य. और मध्वाचार्य जो है शुरू से ही ये अद्वितीय थे, क्योंकि इनके माता पिता का नाम था मध्यगेह भट्ट और वेदवती. और शुरू से ही जो जिस तरह का व्रत रखा है इनके माता पिता ने इनको कंसीव करने के लिए, क्योंकि पहले बहुत ही, ये जो मध्यगेह भट्ट थे बहुत ही पवित्र ब्राह्मण थे बहुत ही पवित्र ब्राह्मण होने के साथ साथ इनकी कोई इच्छा नहीं थी विवाह करने की। इनका बस यही था कि मैं भगवान की महिमा गान करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन बाद में माता पिता और वरिष्ठों ने जब इनको कहा कि आपको विवाह करना चाहिए, तो इन्होंने वेदवती नाम की बहुत ही पवित्र ब्राह्मणी से विवाह किया। और फिर एक दिन इनके मन में भगवान की कृपा से ये इच्छा आई कि हमें जो है पुत्र प्राप्ति करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और साइमल्टेनियसली पैरेलली क्या हुआ कि उडुपी में वहां पर अनंतेश्वर जी का मंदिर है और वहां पर अनंतेश्वर जी की पूजा होती है, लेकिन अब पूजा बहुत ही स्लो चल रही थी क्योंकि ना मायावादियों का बहुत ही बोलबाला था। लेकिन तभी जो है वहां पर एक दिन एक पागल आया और पागल जो है वो अनंतेश्वर के मंदिर के ऊपर चढ़ गया और अनंतेश्वर मंदिर के ऊपर चढ़ के जहां पर झंडा लगा होता है वहां पर वो नाचने लगा, झंडा पकड़ के वहां पर मंदिर के ऊपर नाचने लगा और वो चिल्लाने लगा कि आने वाला है, आने वाला है, एक महान आचार्य आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, वो भक्ति का प्रचार करने वाला आने वाला है, विष्णु भक्ति का समय फिर से आएगा, भगवान की भक्ति का समय फिर से आएगा, शंकराचार्य भाष्य का खंडन करने वाला आने वाला है, आने वाला है। तो लेकिन कोई समझ नहीं वाला पाया कि ना ये कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। और इस तरह से नृत्य करता रहा करता रहा और फिर ये मंदिर के ऊपर से कूद के नीचे कहां गायब हुआ किसी को पता नहीं लगा कि कौन आने वाला है। तो मध्य गेह भट्ट को भी नहीं पता था कि वो एक इंस्ट्रूमेंट बनने वाले हैं एक महान आचार्य के आने के। तो वो थे वास्तव में श्रीपाद मध्वाचार्य। तो उन्होंने 12 साल वास्तव में व्रत रखा, ब्रह्मचर्य का व्रत रखा वेदवती जी ने और मध्य गेह भट्ट ने, उनके माता पिता ने। जैसे अक्सर यहां भक्ति जब डिवोटी जब कंसीव करते हैं तो 64 माला का जप करते हैं, गुरु की आज्ञा लेते हैं और उसके बाद फिर प्रार्थना करते हैं कि अब जो बच्चा आएगा वो भक्त हो। और इस तरह से यहाँ पर इन्होंने बहुत घोर तपस्या की कि अब जो आने वाला व्यक्ति है बहुत ही दिव्य हो। इसके लिए उन्होंने 12 साल व्रत रखा, 12 साल। उसके बाद फिर उन्होंने भगवान विष्णु अनंतेश्वर जी से प्रार्थना की कि जो बच्चा है वो शुद्ध हो, पवित्र हो। तो उसके बाद फिर जब दोनों ने कंसीव किया चाइल्ड को, तो उस वक्त मध्वाचार्य वायु जो वायु थे उस वक्त वायु भी वेदवती के गर्भ में चले गए। और जैसे ही वो वेदवती गर्भ में गए, वेदवती बहुत ही ज्यादा मतलब उनका तेज कई गुना बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया वेदवती का तेज जब मध्वाचार्य जी ने प्रवेश किया। और उसके बाद जब उनका जन्म हुआ तो भी बहुत विशेष था उनका। किसी तीर्थ स्थान पर लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक जो स्थान था जंगल पड़ता था और उस जंगल में ना भूत रहा करते थे, विशेष रूप से एक वहां ब्रह्म राक्षस रहा करता था। ठीक है, चार तरह के वैसे भूत पिशाच होते हैं। ठीक है, भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस। इन्हें ब्रह्म राक्षस सबसे डेंजरस होते हैं। ब्रह्म राक्षस इतने डेंजरस होते हैं कि वो भक्तों को भी छू सकते हैं। री बोल, ठीक है, चैंट हरे कृष्णा नाइसली। तो ब्रह्म राक्षस होते हैं ये, इवन भक्तों को भी छू सकते हैं, इतने पावरफुल होते हैं ये। तो इसीलिए ये जब यहां जब मध्य गेह भट्ट अपने बच्चे को लेकर जा रहे थे, इनके आगे तीन व्यक्ति और थे, इनके पीछे भी चार लोग थे, तो इन सबको जो है उस ब्रह्म राक्षस ने पकड़ लिया कि जो भी भाई यहां से मेरे, ये तो मेरा खेलने कूदने का स्थान है, यहां पर कैसे आ गए तुम लोग। तो इसने उनको पकड़ लिया। तो उसके बाद जब मध्य गेह भट्ट ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया लेकिन कोई फर्क पड़ा नहीं। तो क्योंकि ये जो ब्रह्म राक्षस था उन्हीं में से एक में घुसा हुआ था, तो वो व्यक्ति बोला, कहता मैं ब्रह्म राक्षस हूं और क्योंकि तुम यहां पर आए हो इसलिए मैंने तुमको रोका है, लेकिन आज मेरे पवित्र होने का स्थान है, तुम्हारा जो पुत्र है इसके चरणों की धूल लो और मेरे सर पे लगाओ, तभी मेरा उद्धार होगा। तो मध्य गेह भट्ट ने अपने पुत्र के पांव से धूल ली और डरते डरते जो है जिसको ब्रह्म राक्षस चढ़ा हुआ था उसके सर पे छिड़की। जैसे छिड़की उसी वक्त जो है वो व्यक्ति नीचे गिर पड़ा और तभी जो है वहां से दिव्य रोशनी निकली और तर गया वो व्यक्ति। तो वो जो ब्रह्म राक्षस जो फंसा हुआ था अपने पापों के कारण, वो मध्वाचार्य जी के बचपन में, ये अभी छोटे अभी गोद में अभी मध्वाचार्य, तो उनकी चरणों की धूल से उसका वो पवित्र हुआ वो। तो इस प्रकार से बचपन से उन्होंने कई दिव्य लीलाएं की। जब वो 5 साल के थे तो उन्होंने, जैसे प्रभुपाद जी ने यहां बताया कि मणिमान नाम के राक्षस को मारा उन्होंने। अब ये मध्वाचार्य जी के जीवन में जितने भी ये नास्तिक लोग थे या जैन फिलोसफर थे, मायावादी थे, इन सबको जो हराया, ये सब और कोई नहीं थे, ये असल में ये हनुमान जी और भीमसेन इनके द्वारा जो पीटे गए राक्षस थे, ये बदला लेने के लिए आए थे। मध्वाचार्य जी ने इनको निपटा दिया, कहते हो गया बदला तुम्हारा। ये जितने भी फिलोसफर आए, जैसे कि एक बुद्धिस्ट फिलोसफर आया था, उसका नाम था बुद्धि सागर, और उसका नाम बुद्धि सागर उसको टाइटल दिया गया था क्योंकि वो इतना ज्यादा बुद्धिमान है कि उसके बुद्धि का सागर है उसके पास, और उसने जो 6 घंटा जो उसने एक्सप्लेनेशन दी उसको 10-15 मिनट के अंदर मध्वाचार्य जी ने निपटा दिया। तो उसको पता लगे ये तो बुद्धि सागर नहीं है, तो बुद्धि कूप भी नहीं है असल में। जो इस तरह से कई कई फिलोसफर्स आते थे और मध्वाचार्य जो है उनको हरा दिया करते थे, फेरोशियस मध्वाचार्य जी। तो बचपन में जो है उन्होंने ये कार्य कर दिया था कि उसको अपने पांव के अंगूठे से मार दिया था। उनके पिताजी के ऊपर ऋण चढ़ा हुआ था जब प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं, और इन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, ऋण मैं चुका दूंगा। कहते तुम कैसे चुकाओगे? कहते कुछ नहीं, मेरे को आप जो वो इमली खा रहे थे तो इमली के कुछ बीज पड़े हुए थे, तो बीज जो है उन्होंने हाथ में पकड़े, आप क्या करो इससे ऋण चुका दो। और जब उन्होंने हाथ में दिए तो सोने के वो अशरफे बने। कहते ये कैसे कर दिया है, ये मेरे बच्चे ने कैसे कर दिया, ये कैसे संभव है? तो बचपन से ही जो है वो ऐसी लीलाएं दिखाया करते थे। एक बार उनको उनकी अन्न प्रसन्न लीला कैसे हुई, यानी कि भक्त जब बच्चे को जब अनाज खिलाया जाता है, अभी वो प्लान बना रहे थे उनके माता पिता कि हमारा बेटा जो है इसको अभी हमें अन्न प्रसन्न का जो संस्कार होता है पूरा करना है। तो एक दिन इनकी माता जी घर से गई हुई थी, और जब इनकी माता घर से गई हुई थी तो पीछे से इनकी सिर्फ बहन ही थी, तो इनकी बहन थी तो उन्होंने कहा मेरे को भूख लगी है। कहते हैं अभी बस अभी माँ आ रही है और फिर तुमको खिलाएंगी। मेरे को बहुत भूख लगी है लेकिन, कहते अब मैं कहाँ से कुछ लेके आऊं। तो वो ढूंढी रही थी तो ना बोरी जो है अनाज के नीचे गिर गई, तो अभी ये थोड़ा बाहर देखने के लिए कि माँ अभी कितनी दूर है आने में। तो पीछे जब वापस आई अपनी माता के साथ तो उन्होंने देखा कि जो 40 किलो की जो अनाज की बोरी थी गई, मतलब ऐसी अनाज हुई ना पिसा हुआ हो गूंदा हुआ हो ना ना, वो निरा अनाज था ग्रेन 40 किलो। मध्वाचार्य जो है ये अन्न प्रसन्न लीला, अदरवाइज इसे वो खिलाते तो कहना कहते इतना से लेते हैं अनाज ना, और ये इतना कहते इससे ज्यादा क्या हजम करेगा बच्चा। तो ये जब छोटे से हैं मध्वाचार्य 40 किलो खा गए वो 40 kg। इस तरह से जब वो छोटे थे तो उनको भूख लगी थी तो केले के बगीचे में गए, तो केले के बगीचे में जो वहां का माली था उसने जो है जो पके हुए केले थे वो नीचे उतार के रखे हुए थे, तो करीब 5,000 केले थे वो। मध्वाचार्य जी उनको खा गए, कितने सिर्फ 5,000 केले, क्योंकि उनका जब अन्न जब उनका संस्कार जब हुआ तो उनको कई चीजें दी गई थी। उनको घी खिलाया गया था, घी खिलाया गया ताकि उनका शरीर अच्छा रहे, उनको सोना चटाया गया था ताकि उनकी बुद्धि अच्छी हो, और उनको हनी चटाया गया था ताकि उनका डाइजेशन बहुत अच्छा हो। लेकिन हम जैसे जानते हैं कि भीमसेन जी जो है जो हमारे पेट में जो अग्नि है जो कि जिसको बोलते हैं जठराग्नि, जठराग्नि का जो ओरिजिनल स्थान जो है भगवान ने बनाया वो भीमसेन जी के पेट में बनाया है। तो इसे जो भीमसेन जी को भूख लगती है उतनी किसी को नहीं लगती, इसीलिए भीमसेन जी को जब आप सब जानते हैं जो लाक्षाग्रह जो बना था तो वहां पर प्लान ये था कि हम पांडवों को जहर देके मारेंगे और फिर जला देंगे। तो वहां सुलोचना नाम की व्यक्ति था, उसकी बहन ने जहर मिलाकर खाना बनाया था ताकि पांडवों को जहर देके मारा जा सके। तो भीमसेन जी वो सारा जहरीला खाना खा गए थे, उनको कुछ नहीं हुआ था क्योंकि वो सब बचा सकते हैं, जहर ही बचा सकते हैं वो। तो फिर 1,000 केले या 40 किलो अनाज तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हीं की इनकार्नेशन है फाइनली मध्वाचार्य। तो इस प्रकार से बचपन में ही उनकी दिव्य लीलाएं थी, और उन्होंने अपनी माता को बोला था कभी भी आप मेरे को पुकारो मैं जहां भी होऊंगा मैं आ जाऊंगा, क्योंकि वो वायु के इनकार्नेशन है, इसलिए वो छलांग मार के एक ही बार में आ सकते थे, कहीं से भी आ सकते थे तो एक ही छलांग मारते थे, से वो दूसरे शहर में एक छलांग मारेंगे आ जाएंगे। ये थे श्रीमान मध्वाचार्य। तो बचपन से ही जो है उन्होंने अद्वितीय गुणों को जो उनके उनको उनको प्रकट किया श्रीमान मध्वाचार्य जी ने। तो इस तरह से उनकी अन्न प्रसन्न लीला हुई। और जब आगे बढ़े तो आगे जाके जो है उनकी ये इच्छा हुई कि अब क्योंकि मेरे को अब और जो उनके जो टीचर थे वो उनके टीचर को सिखाया करते थे कि आप जो बता रहे हो ना ये ठीक नहीं है, असल में मैं आपको बताता हूँ क्या ठीक है। तो टीचर कहते थे अच्छा तुम बताओगे ठीक है तो बताओ क्या, और फिर वो जो एक्सप्लेनेशन देते थे कहते हाँ ये तुमने बिल्कुल सही बताया। तो वो अपने टीचर को बताया करते थे, इसीलिए स्कूल में बहुत कम टाइम स्पेंड किया मध्वाचार्य ने, सीखे तो किससे सीखे, टीचर से जिसको वो सिखाने के लिए जाते। तो बचपन से उनकी ये लक्षण थे कि तो टीचर को बहुत अच्छा लगता था। तो 12 साल की जब उनकी उम्र हुई और उनकी उनका स्कूल एजुकेशन पूरी हो चुकी थी 12 साल की उम्र में, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी सब हो चुकी थी उनकी, सब एवरीथिंग 12 साल की उम्र में, तो उन्होंने सोचा अब मेरे को अपना असली कार्य करना है, तो इसलिए मेरे को प्रचार के कार्य करने के लिए अब संन्यास लेना होगा। तो इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को बोला कि मेरे को अब संन्यास लेना है। कहते बेटा अभी तुम इतनी छोटी उम्र, तुम कैसे संन्यास लोगे? कहते हैं मुझको प्रचार करना है, मुझको संन्यास लेना होगा, मुझको वैसे ही इंद्र तृप्ति कोई इच्छा नहीं है, तो इसलिए मेरे को संन्यास लेना है। तो इसीलिए उन्होंने, एक बहुत ही महान भक्त थे अच्युत प्रेक्ष, अच्युत प्रेक्ष जो है, इनको बताया जाता है कि ये पांडवों का जो महल था उसमें बम्बल बी थे अच्युत प्रेक्ष, और द्रौपदी अपने हाथों से खुद इनको शहद खिलाती थी। तो यही बम्बल बी जो है ये मध्वाचार्य जी की लीला में अच्युत प्रेक्ष के रूप में, और इनको संन्यास गुरु के रूप में स्वीकार किया मध्वाचार्य जी ने, और इनका संन्यास के बाद से नाम पड़ा पूर्ण प्रज्ञ, और बाद में इनका नाम पड़ा आनंद तीर्थ, ऑल्सो आनंद तीर्थ के नाम से बहुत विख्यात हुए। लेकिन अच्युत प्रेक्ष थे ये भी इनको देख के बहुत प्रभावित थे, क्योंकि जब इनसे पहली बार मिले और जिनका व्यक्तित्व था इनको देखा तो बहुत प्रभावित हुए इनसे कि अद्वितीय बालक है ये जो आनंद तीर्थ है। तो अच्युत प्रेक्ष, इनफैक्ट अच्युत प्रेक्ष ने जो कंपोजिशन लिखी हुई थी उनको एडिट किया और उनको ठीक किया आनंद तीर्थ मध्वाचार्य जी ने, कि ये इनकी जो है ये ठीक एक्सप्लेनेशन है, उनकी एक्सप्लेनेशन को ठीक करने वाले थे ये। तो लेकिन इनके पिताजी आए, उन्होंने पिताजी ने बोला देखो बेटा तुम अभी क्यों संन्यास लेने जाते हो, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हारा तो हमारी देखभाल कौन करेगा, फिर कम से कम तब तक वेट कर लो जब तक हम लोग शरीर नहीं छोड़ देते। तो मध्वाचार्य जी अभी संन्यास ले रहे थे, संन्यास वाली सेरेमनी में बैठे हुए हैं अभी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं संन्यास तब तक नहीं लूंगा जब तक आपको सहारा देने वाला एक और व्यक्ति नहीं आ जाता। और फिर तुरंत तुरंत जो है वेदवती फिर से गर्भवती हो गई, और फिर उनका एक और बेटा हुआ, और जब उनका दूसरा बेटा हुआ तो उन्होंने कहा देखो अब आपका बेटा हो गया ना, अभी आपकी देखभाल कर लेगा, अब मैं संन्यास लेने के लिए जा रहा हूँ, और फिर वो संन्यास लेने के लिए चले गए। और ये उनका बेटा था, इसने भी माता पिता का ध्यान रखा, और माता पिता के का देह अंत होने के बाद इन्होंने भी फिर मध्वाचार्य जी के शिष्य बने, इनका नाम पड़ा फिर विष्णु तीर्थ, और इन्होंने इनका इनको फॉलो भी किया। इनको फॉलो किस तरह से किया कि जब एक बार मध्वाचार्य जी ने वैसे जो कुछ भी लिखा उनको उन्होंने अप्रूव कराया व्यासदेव जी से, व्यासदेव जी को पता ना कहा रहते बद्रिकाश्रम, और बद्रिकाश्रम कोई इंसानी व्यक्ति नहीं जा सकता। तो इस उनका पीछा करते करते कि ना देखता हूं ये मध्वाचार्य कहाँ जाते हैं, तो चलते चलते अब ये तो वायु है तो पांव रखा पहाड़ पे, पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते पहाड़ पे ये तो ऐसे चढ़ रहे हैं, पहाड़ी ऐसे चढ़ रहे हैं ये, तो ये भी इनके पीछे पीछे हो रही है, अब ये तो धीरे धीरे चढ़ेंगे ना, ये हाथ रखा यहाँ हाथ रखा, इस तरह करते करते क्या बीच में पहुंचे जहां फंस गए, नीचे भी नहीं उतर सकते ऊपर भी नहीं चढ़ा जा रहा। फिर मध्वाचार्य जी वापस आए, इनको उठाया और फिर नीचे रखा, मतलब ऐसे चढ़ चुके थे पहाड़ी काफी है, उसके बाद इनको नीचे रखा, कहते हैं मेरा पीछा मत करो, तो मेरा पीछा नहीं कर सकते। फिर मध्वाचार्य फिर से उड़ते उड़ते जो है, ऐसे उनको उड़ना ही था, वो चलते थे तो एक पहाड़ी पे पांव रखा, दूसरी पहाड़ी पांव रखा, तीसरी पहाड़ी पे गए, इस तरह से वो बद्रिकाश्रम पहुंच गए वेदव्यास जी के पास। और वेदव्यास जी के पास जाके उन्होंने पहले तो शास्त्र भी समझे थे उनसे, उसके बाद भगवद गीता और महाभारत और रामायण पे जो टिप्पणी लिखी वो भी प्रेजेंट की कि भाई आप अप्रूव कर दीजिए। फिर वेदव्यास जी ने देखा, बहुत प्रशंसा की और फिर उसको अप्रूव किया। तो इसमें मध्वाचार्य जी के जो ग्रंथ हैं वो पर्सनली अप्रूव्ड हैं वेदव्यास जी के द्वारा, पर्सनली अप्रूव्ड है। और फिर उसके बाद फिर वो वापस आए, और मध्वाचार्य जी ना पूजा किया करते थे, और पूजा करने के लिए ना एक विशेष मंदिर था जिसमें जाया करते थे, लेकिन ना वो कोई नहीं जानता था कि मतलब अंदर पूजा किसकी करते हैं, क्योंकि वो अंदर जाते थे दरवाजा बंद कर लेते थे और अंदर से बस घंटी की आवाज आती थी, दैट्स इट, और कुछ और किसी को नहीं पता था ये क्या चीज है। तो अंदर तो अभी अंदर जाते दरवाजा बंद कर लेते, तो इनका एक शिष्य था उसने पीछा करना चाहा कि मैं देखूं कि ना मेरे गुरुदेव की सिर्फ घंटी की आवाज आती लेकिन किसी पूजा करते हैं ये हमने आज से देखा नहीं, इनके डीटीज हमने कभी देखे नहीं। तो उसने ना जो दरवाजे में छोटा सा होल था उसने उस होल से देखा, उसने होल से देखा अंदर क्या चल रहा था। अंदर तीन विग्रह थे, भगवान कृष्ण के विग्रह, भगवान श्री राम के विग्रह और व्यास देव जी के विग्रह। जो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह हैं भीमसेन जी उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं घंटी बजा रहे हैं, ठीक है। श्री राम है, श्री राम के आगे हनुमान जी घंटी बजा रहे हैं और आरती कर रहे हैं, और यहां व्यास देव जी हैं मध्वाचार्य जी उनकी आरती कर रहे हैं। ये तीन पैरेलल आरतियां चल रही थी, जैसे राधा पास आती मैंने देखा मैं तीन ऑल्टर है और तीन ऑल्टर में तीन पुजारी जो है, यहां पर पुजारी कौन कौन है, भीमसेन हनुमान जी और मध्वाचार्य, और ये अपने डीटीज की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये देखिए वो वहीं पर फेंट हो गया वो। तो फिर पूजा जब वहां जब पूरी हुई तो फिर जब दरवाजा खुला तो फिर मध्वाचार्य जी आए उसको उठा के, क्योंकि वायु है सो लेके उसको मठ में छोड़ के आए। या भगवान श्री कृष्ण, राम जी और वेद व्यास जी, ये तीनों की डीटीज थे। हनुमान जी श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं, ठीक है, भीमसेन जी भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं, और वेदव्यास जी की पूजा कर रहे हैं मध्वाचार्य। तो इस तरह से ये पूजा अर्चना चल रही थी। तो इस तरह से बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी मध्वाचार्य, वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जब प्रचार करते तो इनका प्रचार इतना विख्यात हो गया, एक व्यक्ति बहुत ही ईर्ष्यालु था, उसने कहा बंद करो ये प्रचार, क्यों तुम भक्ति का प्रचार कर रहे हो। तो मध्वाचार्य ने कहा देखो तुमको रोकना है रोक लो, मैं तो प्रचार करूंगा, तुमको जो करना है कर लो, मैं तो प्रचार जरूर करूंगा, मैं तो कृष्ण कथा जरूर बोलूंगा, अब तुमको जो अगर मुझे रोक सको तो तुम्हारी इच्छा है। अब ये व्यक्ति आया, इसने ना मध्वाचार्य जी को गला दबाना शुरू कर दिया एक्चुअली, और इसमें बताया जाता है इसके अंदर जो है 100 व्यक्तियों का दम था, ताकत थी, 100 मैन, 100 लोगों की ताकत थी इसके अंदर, और इसने जो है मध्वाचार्य गला दबाना शुरू किया, मध्वाचार्य बोले जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है परम भगवान है और उनकी शुद्ध भक्ति हमको करनी चाहिए, और मध्वाचार्य लगे हुए हैं, ये आधे घंटे तक उन्होंने गला दबाता रहा, आधे घंटे तक, उसके बाद पसीना पसीना होकर तरबतर होकर गिर पड़ा। मध्वाचार्य ने कहा हो गया तुम्हारा बोलो, और मध्वाचार्य कंटिन्यू कर रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, मतलब ही वाज प्रैक्टिकली इवन फिजिकली ही वाज अनस्टॉपेबल फिजिकली ऑल्सो। जैसे यहां बताया प्रभुपाद जी ने कि कुछ डाकू आए, डाकुओं को जो है इन्होंने मार भगाया, मतलब घूसा मार के मार दिया, उन्हें घूसा मार के घायल नहीं किया, मर गए वो, घूसा खाया मर गए वो। इस तरह से एक बार शिष्यों के ऊपर जो है शेरों ने हमला कर दिया था, तो उन्होंने जो है घूसा मार के उनके जबड़े तोड़ दिए, और यहां तो घायल कर दिया उन्हें, यहां शेरों को मार दिया। ये मध्वाचार्य, श्रीमान मध्वाचार्य, अमेजिंग पर्सनैलिटी, और बहुत ऊंचे थे, बहुत टॉल थे, 8 फीट लंबे थे, ठीक है, तो सबसे अलग नजर आते थे जहां भी चलते थे, ना से लंबे थे ब्रॉड थे, इतने कंधे चौड़े, ठीक है, और जैसा इनका लुक थी, इनकी बहुत ही इंटेंस लुक थी, इतना मोटा ब्राह्मण थ्रेड, ऐसा हमारा ब्राह्मण थ्रेड कितना होता है, इतना सा होता है बेचारा, है ना, इनका इतना मोटा ब्राह्मण थ्रेड था, ऐसे लहरा रहा होता था। अब क्योंकि इतने ऊंचे थे इसीलिए इतना बड़े कपड़े तो बनते नहीं कभी, तो इनके संन्यास के कपड़े जो है इनके घुटने तक ही आते थे, और कुछ शिष्य थे वो 2 कपड़ों को जोड़ के बनाते तो भी इनके टखने तक आते थे, लेकिन कभी भी इनके पूरे कपड़े बन ही नहीं पाए कभी, श्रीपाद शंकराचार्य जी, सॉरी मध्वाचार्य जी के, टॉल ह्यूज पर्सनैलिटी, ह्यूज, तो बहुत ही इंटेंस पर्सनैलिटी थे, बहुत ही ज्यादा इंटेंस श्रीपाद मध्वाचार्य, एंड ही वाज प्रैक्टिकली अनडिफीटेड, अनडिफीटेड। तो मध्वाचार्य जी की जो है कई सारी ऐसी दिव्य लीलाएं हैं जो कि उन्होंने प्रकट की, और जो इनका तिरुभाव भी हुआ, तो तिरुभाव हुआ वो भी बड़े दिव्य तरीके से हुआ। इनका तिरुभाव हुआ था जब ये अनंतेश्वर मंदिर में थे, और अनंतेश्वर मंदिर में ये ऐत्रेय उपनिषद के ऊपर व्याख्यान दे रहे थे, और तब इतने इफल्जेंट लग रहे थे कि सब शिष्य जो है इनके ऊपर फूल फेंक रहे थे, लेकिन फूल जितने फेंके जा रहे थे इससे ज्यादा फूल उनके ऊपर गिर रहे थे, क्योंकि देवी देवता भी उनके ऊपर फूल फेंक रहे थे, जिनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। तो हुआ क्या, फूलों की वर्षा से पूरे ढक गए। तो शिष्य ने कहा अरे ये क्या हो गया, तो मध्वाचार्य जी सारे ढक गए। तो मध्वाचार्य ऐसे ऐसे बैठे थे, और जब ऐसे बैठे हुए तो यहां तक पूरे ढक गए, तो उनके शिष्य गए उन्होंने फूल हटाए, जब फूल हटाए तो मध्वाचार्य जी वहां पर नहीं थे। आप नीला समाप्त करके मध्वाचार्य जी वापस बद्रिकाश्रम अपने इष्टदेव श्री व्यास देव जी के पास चले गए। तो श्रीमद् मध्वाचार्य जी का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और विशेष रूप से उनका जो सिद्धांत है उसको तत्ववाद बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने हर चीज को एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन किया, एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन किया, हर चीज को तत्व में उन्होंने एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट जो मध्वा के जो मध्वाचार्य जी के जो फॉलोअर्स हैं वो तो ये मानते हैं कि जीवात्माओं में थे, जीवात्मा ही नहीं थे एक्चुअली, वो जीवात्माओं में ना उनका जो मानना है मध्वाचार्य जी के फॉलोअर्स का कि जीवात्माएं होती हैं, और जीवात्माओं में एक अंतरंगा शक्ति होती है जो कि अंतरंगा शक्ति इंटरनल पोटेंसी जो कि जीवात्माओं से श्रेष्ठ होती है, ठीक है, इसके ऊपर भी श्रेष्ठ एक विशेष जीवात्मा होती है जिसको बोलते हैं वायु, हु इज नेक्स्ट टू लॉर्ड विष्णु। तो ये वो थे असल में, इसीलिए ये इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे श्रीपाद मध्वाचार्य। तो उन्होंने बहुत ही परफेक्टली एक्सप्लेन किया मध्वाचार्य जी ने हर हर सिद्धांत को। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ कि ना वैसे अभी तो हम लोग जानते हैं भगवान है, अंतरंगा शक्ति वाले जीवात्माएं होती हैं, तटस्थ शक्ति वाली जीवात्माएं होती हैं, है ना। जो मध्वाचार्य जी के फॉलोअर्स कहते हैं कि जो तटस्थ शक्ति वाली जीवात्मा के ऊपर जो अंतरंगा शक्ति वाली जीवात्मा है इनके ऊपर भी एक विशेष जीवात्मा है वायु, और ये वो वाली वायु नहीं है जो पवनदेव वाली वायु है, ये स्पेशल वायु है, ये वो वायु है जो कि लीलाओं को होने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ये वो वायु जो है हाँ ऊपर, तो ये वो वायु, ये वो थे, दिस व्हाट दे बिलीव, ठीक है। और उनका बहुत ही विशेष ग्रंथ है महाभारत तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पर्य निर्णय जो है वो कॉमेंट्री है श्रीमद् मध्वाचार्य जी की रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कई सवाल आते हैं है ना कि भाई सीता मैया को क्यों जाना पड़ा, सीता मैया को का त्याग क्यों किया भगवान श्री राम ने, उसको एक्सप्लेन किया मध्वाचार्य जी ने कि अगर अगर सुग्रीव जो है अगर भगवान के भक्त थे तो उनकी वाला पिटाई क्यों हुई, भगवान श्री राम पहचान क्यों नहीं पाए, बोला क्यों भाई तुम माला पहन के जाना पहचान नहीं पाता, भैया भगवान को क्या दिक्कत है पहचानने में, ठीक है। तो इन सब का एक्सप्लेनेशन दिया है मध्वाचार्य जी ने, जैसे जैसे इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया है मध्वाचार्य जी ने कि ऐसा क्यों हुआ कि सुग्रीव को ये क्यों बोला कि ना मैं पहचान नहीं पा रहा तुमको, तुम ना माला पहन लो, लेकिन पहली बार जो गए तो बाली से पिटाई खा गया है। तो इसका आंसर मध्वाचार्य जी ने क्योंकि सुग्रीव जब पहली बार श्री राम से मिले तो उन्होंने डाउट किया कि पता नहीं भगवान है या नहीं है, और फिर उन्होंने परीक्षा ली श्री राम की, या भगवान की परीक्षा लेने का क्या बिसात है, अपराध किया, इस अपराध का उनको दंड भुगतना पड़ा कि बाली से पिटाई हुई, और फिर श्री राम ने कहा देखो तुम ना माला पहन के तो क्या अलग से नजर आओगे ना, फिर ये ठीक रहेगा। तो हर उसके लिए कारण दिया उन्होंने कि बाली को छुपकी क्यों मारा, उसका एक्सप्लेनेशन दिया फिर उन्होंने, या फिर जो कर्ण था कर्ण को इस तरह क्यों मारा भगवान श्री कृष्ण की, बोला भाई पहिया फंस गया मार दो उसको, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पिछले जन्म में जो कर्ण था असल में एक राक्षस था जिसका नाम सहस्त्रबाहु था, और नर नारायण ऋषि ने इसको मारा था, इसकी 999 बाजुएं काट दी थी, फिर भाग लिया था ये, जब भाग लिया तो इसकी जो आखिरी जो बाजुएं बटी हैं वो फिर कर्ण के रूप में भगवान ने मारी, फिर अगेन नर नारायण ऋषि कौन, कृष्ण और अर्जुन। तो इस तरह की अद्भुत एक्सप्लेनेशन है महाभारत तात्पर्य निर्णय के अंदर, और कई सारे जो है इन्होंने कहीं और भी कई ग्रंथ रखे। और जब इनका अपीयरेंस डे होता है, आविर्भाव तिथि होती है, तिरुभाव होता है, तो उडुपी में इसको जानते कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एक तो सेलिब्रेट करने का तरीका है कि भाई आप सुंदर बनाओ उसके बाद क्या करो बस फीस करो, इसको सेलिब्रेट किया जाता है कि मायावादियों को इन्वाइट किया जाता है, मायावादियों को इन्वाइट करते हैं कि आइए हमारे उडुपी में आइए, आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक है हम यहाँ फेस्टिवल कर रहे हैं, तो हमने एक डिबेट ऑर्गेनाइज की है, और फिर डिबेट में उनको बुला के उनके छितर छितर करना, उनकी उनकी बेइज्जती करना, उनके आर्गूमेंट्स की मायावाद की को पूरी तरह तोड़ के कचोड़ के मचोड़ के उनको ये एहसास दिलाना कि देखो तुम्हारे पास अब एक ही चारा है, या तो भक्त बन जाओ या आत्महत्या कर लो, और उसके बाद फिर फीस्टिंग होती है। दिस इज हाउ दे सेलिब्रेट अपीयरेंस ऑफ मध्वाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। तो इनकी जो लेखनी थी बहुत ही मतलब अद्भुत थी श्रीपाद मध्वाचार्य जी की, और इसीलिए जो मध्वाचार्य जी कुछ फॉलोअर्स हैं जो कि जिनकी इतनी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो ये बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु अगर मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में आए तो उन्होंने अपना सिद्धांत क्यों दे दिया, ये अचिंत्य भेदावेद तत्व सिद्धांत, ये क्या बात है भाई, तत्व द्वैतवाद चलना चाहिए ना, इस कौन में कौन सा सिद्धांत होना चाहिए था, द्वैतवाद, क्योंकि हम मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में आ रहे हैं, हमारे संप्रदाय का नाम है क्या, गौड़ी ब्रह्म मध्वा गौड़ी संप्रदाय, ब्रह्मा जी मध्वा मध्वाचार्य का गौड़े संप्रदाय, तो इस तरह से हम लोग आ रहे हैं, तो भाई हमको द्वैतवाद स्वीकार करना चाहिए, ये तो हमने अलग ही अपना सिद्धांत निकाल दिया, अचिंत्य भेदावेद तत्व सिद्धांत, ये तो डिविएशन है, ऐसे कैसे भाई। लेकिन हालांकि जो जो पाजक क्षेत्र के जो हेड हैं वो इस कौन को मानते हैं कि यू आर द ट्रू फॉलोअर्स ऑफ मध्वाचार्य, क्योंकि मध्वाचार्य जो प्रचारक थे, प्रीचर थे, हम लोगों ने प्रीचिंग नहीं की, इस कौन प्रीचिंग कर रहा है, इसलिए वो प्रभुपाद जी को इतना प्रशंसा करते हैं, प्रभुपाद जी की बहुत प्रशंसा करते हैं, जो पाजक क्षेत्र के जो नाम बोल रहा हूँ महाराज का, बट ही प्रेजेस लाइक एनीथिंग, इनफैक्ट भक्ति विकास महाराज की व्यास पूजा वहाँ पर हुई थी, प्रभुपाद जी शिष्य श्री भक्ति विकास महाराज, उनकी व्यास पूजा जो है एक बार उडुपी में हुई थी, और उन्होंने ऑर्गेनाइज की कि हम सब कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर उन्होंने भक्ति विकास महाराज की बहुत प्रशंसा की और प्रभुपाद जी की प्रशंसा की कि प्रभुपाद जी ने क्या सन्यासी बनाए, अमेजिंग। तो जो जो उनके ट्रू फॉलोअर्स हैं वो मानते हैं कि वास्तव में इस कौन जो है वो मध्वाचार्य जी को ट्रूली रिप्रेजेंट करता है, ट्रूली रिप्रेजेंट करता है, वास्तव में उनके असली प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि हम लोग प्रचार के कार्य में, और प्रचार जो था वो बहुत ही प्रमुख कार्य था मध्वाचार्य जी का। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये आती है कि ऐसा क्यों कि द्वैतवाद प्रस्तुत किया था मध्वाचार्य जी ने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया अचिंत्य भेदावेद तत्व सिद्धांत, ठीक है। इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल कारण यह है कि ना अगर भगवान की सत्ता को स्थापित करना है ना तो दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है, यानी कि कॉमन भी होना चाहिए और अलग अलग भी होना चाहिए। अगर सब कुछ एक ही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फूल गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी और फूल गोभी, बताओ इसमें से श्रेष्ठ कौन? अच्छा ठीक है, दूसरा एक्सट्रीमली डिफरेंट सिनेरियो, फूल गोभी, पालक, सेब, संतरा, इनमें से बताओ श्रेष्ठ कौन? बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो अगर भगवान की श्रेष्ठता साबित करनी है अगर, तो क्या है, कॉमन भी होना पड़ेगा और डिफरेंट भी होना पड़ेगा। जैसे अगर बोला जाए सेब, शरीफा, अंगूर और आम, इनमें फलों का राजा कौन? आम। क्यों? क्योंकि सब में कॉमन बात भी है कि ये सबके सब फल है, लेकिन ये सब अलग अलग भी हैं। शरीफा भी है, केल है, केला है, है ना, संतरा, ये अलग अलग है, आम है, तो अलग अलग भी हैं, लेकिन इनमें एक चीज भी है कि ये सबके सब फल है, फल 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 फल, फलों का राजा आम। यानी कि डिफरेंस भी होना चाहिए और एक भी होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का जैसे सिद्धांत जो है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अचिंत्य तत्व, अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत, इसमें वाद नहीं है। जैसे कि रामानुजाचार्य जी का जो सिद्धांत है उसका नाम है विशिष्ट अद्वैत वाद, निम्बार्काचार्य जी का सिद्धांत है द्वैत अद्वैत वाद, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत का नाम है अचिंत्य भेद, अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत, वाद नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये कंक्लूजन है असल में। तो मध्वाचार्य जी ने सब कुछ दिया लेकिन सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो था रस तत्व। भगवान के प्रति जो रागन हुआ प्रेम में ही भक्ति है, उसके बारे में डिटेल्स नहीं थी और वो उनके लिए प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि बहुत ही इंटेंस पर्सनैलिटी थे, बहुत ही प्रखर प्रचारक थे, काटम काट प्रचारक थे। अब जो व्यक्ति बहुत ही काटम काट है ना, उसके लिए क्या है, अब ये जो माधुर्य वाला पार्ट है, जो स्वीटनेस वाला एस्पेक्ट है, ये बताना साइमल्टेनियसली बात बनती नहीं है, है ना। तो इसीलिए मध्वाचार्य जी ने सिर्फ रस तत्व को छोड़ के बाकी सब कुछ एक्सप्लेन किया, इसमें जो रस जो है इसका प्रभाव किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो इसीलिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया, वो मध्वाचार्य जी के जो सिद्धांत है द्वैतवाद, उसी का ही एक्सटेंशन है, उसी का कंक्लूजन है, उसी का ही निष्कर्ष है असल में। तो कोई डिविएशन नहीं है इसके अंदर, कोई डिविएशन नहीं है। और हमारे संप्रदाय में एक बहुत ही महान आचार्य है श्री बलदेव विद्याभूषण, वो पहले मध्व संप्रदाय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, दीक्षा नहीं ली थी, शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन जब वो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में आए तो उन्होंने देखा यहाँ पर जो विशेष रस तत्व की बात है, ये जो है भी मध्व संप्रदाय में जानबूझ के नहीं दी गई, क्योंकि ये कार्य जो है चैतन्य महाप्रभु करना है। इसीलिए तो इसमें मध्वाचार्य जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस कॉन्ट्रीब्यूशन, ये जो रस तत्व का जो बीज है, इसको बोया माधवेंद्रपुरी जी ने, इसको अंकुरित किया ईश्वरपुरी जी ने, और इसका जो पेड़ बना वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए हम चैतन्य पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में, हियर आर द डिवोटीज फ्रॉम श्री चैतन्य ट्री। लेकिन ट्री का जो अंकुरित करने का कार्य था वो किया ईश्वरपुरी ने, और इसका जो बीज था वो दिया श्री माधवेंद्रपुरी ने। श्री माधवेंद्रपुरी जो है उन्होंने दीक्षा ली थी लक्ष्मी तीर्थ से, लक्ष्मी तीर्थ श्रीपाद मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में। तो इस तरह से हमारी परंपरा ये बोनाफाइड साबित होती है। लेकिन हालांकि इसको और बोनाफाइड साबित करने के लिए कि हाँ गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की बोनाफाइड है, इसके लिए बलदेव विद्याभूषण जी ने फिर गौड़ी वैष्णव तात्पर्य भी दिया था, जिसको हम बोलते हैं गोविंद भाष्य। लेकिन ये जो गोविंद भाष्य है, ये क्योंकि स्वयं गोविंद जी ने ही दिया था, इसीलिए इसको गोविंद भाष्य बोलते हैं। हालांकि उस वक्त भी बलदेव विद्याभूषण ने कहा था कि भाई हम श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करते हैं, ये तो नेशनल कॉमेंट्री है, इसके अलावा और कॉमेंट्री क्या आवश्यकता है। पर क्योंकि उस वक्त रामानंदी संप्रदाय के जो प्रकांड पंडित थे वो नहीं मान रहे थे, तो इसीलिए ये स्पेशल कॉमेंट्री दी गोविंद भाष्य। तो गोविंद भाष्य भी है, साथ में हमारे पास द्वैतवाद का जो सिद्धांत है जो कि मध्वाचार्य जी के द्वारा दिया गया, तो ये डबली सर्टिफाइड परंपरा है एक्चुअली, ब्रह्मा मध्वा गौड़ी संप्रदाय परंपरा। तो और भी कई सारी लीलाएं हैं वैसे श्रीपाद मध्वाचार्य जी की, ये किस किस तरह से उनकी क्या क्या डीलिंग्स नहीं, कैसे कैसे उन्होंने कई मायावादियों को हराया उन्होंने, तो और भी कई लीलाएं हैं। तो अभी हम यहीं पे विराम देंगे, किसी आपको प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस प्रभु,
एक तो भूत पिशाच और प्रेत ब्रह्मासुर क्या फर्क होता है?
एक्चुअली ना इनका लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत होती है, या भूत प्रेत और पिशाच जो होते हैं, तो इनफैक्ट जो भूत और प्रेत होते हैं ना, ये तो उन लोगों को भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करवाते जो कि ना इमोशनली स्ट्रांग है। सम पीपल आर इमोशनली वेरी स्ट्रांग, ये उनको इतना डिस्टर्ब नहीं करवाते, लेकिन जो इमोशनली थोड़े वीक होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें आंसू थोड़ी थोड़ी, तो जो इमोशनली वीक लोग होते हैं उनमें घुस सकते हैं ये। या फिर ना रात को जो आप देखें जो लोग सोते हैं, लार गिरती है तो ये लार के माध्यम से भी अंदर प्रवेश कर सकते हैं। या फिर किसी अगर नाइट फॉल होता है तो वीर के माध्यम से भी प्रवेश कर सकते हैं। तो ये ब्रह्म, तो ये जो है ये इनमें ताकत होती है इतनी। लेकिन जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ये सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो ये जो कनिष्ठ भक्त है उसको भी छू सकते हैं ये। तो अगर किसी भक्त को कभी ऐसा भूतिया अनुभव हो गया, मैं तो भक्त हूँ, मेरे को ऐसा क्यों हुआ? इसका पहला कारण है कि तुम्हारी भक्ति अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। दूसरा क्या है, जिसने छुआ वो भूत प्रेत पिशाच नहीं था, वो ब्रह्म राक्षस ही हो सकता है। ब्रह्म राक्षस असल में कौन होते हैं? ब्रह्म राक्षस ना ब्राह्मण है, ये पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। इन्होंने ब्राह्मण होते हुए जो इन्होंने गलत कार्य किए, हुंडी का पैसा चुराया, लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन थे ब्राह्मण, ठीक है। गायत्री भी करते थे कभी कभी, कभी कभी, हमेशा नहीं करते थे, टाइम से नहीं करते थे, ठीक है, और लोगों को बेवकूफ भी बनाया। तो ऐसे लोग जो है फिर अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस बनते हैं, क्योंकि इन्होंने पाप किए इसके ब्रह्म राक्षस बनेंगे, लेकिन क्योंकि गायत्री भी की हुई है तो क्या ताकत भी होती है इनके पास, शक्ति भी होती है। सो दे कैन एक्चुअली इंटरफेयर कर सकते हैं ये। लेकिन यार अगर हम शुद्ध भक्ति का पालन करें फिर, लेकिन ब्रह्म राक्षस भी चाहते हैं मुक्ति, तो कभी कभी इसलिए भी आते हैं भक्तों के पास कि यार थोड़ा हरे कृष्णा सुना दो अपने को भी यार, ये चीज है। तो मंदिर के आसपास जो है भूत वगैरह होते हैं, लेकिन मंदिर के पास नहीं आते क्योंकि वाइब्रेशन बड़ी स्ट्रांग है, आसपास नहीं आ सकते। लेकिन जो हल्की हल्की वाइब्रेशन आ रही है, जैसे होटल एडिसन ब्लू के ऊपर छत के ऊपर बैठा हुआ, उसको हल्की हल्की वाइब्रेशन आ रही है वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन की, तो इस तरह से शुद्ध होते हैं ये। तो कहीं मैं जाना नहीं वहां पर होटल एडिसन ब्लू है, ठीक है। हाँ जी, हाँ एक्चुअली वो ना हायर डायमेंशन में है,
कोई नहीं आ
सकता ना, मनुष्य इस देह में कोई नहीं जा सकता। बद्री आश्रम है वहाँ वेद व्यास जी रहते हैं, या हमेशा रहते हैं इटर्नली। तो ये भी एक, ये एक अपने आप में प्रूफ था कि मध्वाचार्य जी का जो शरीर था वो दिव्य था। जैसे जिस सांप ने उनको काटा उसके पांच हुड थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ही ज्यादा जहरीला था ये, और इसने आके मध्वाचार्य जी को डसा था, और मध्वाचार्य जी ने इसको पकड़ा, इसको नीचे रखा, इस पर अपना पांव का अंगूठा रख के मार दिया इसको। और इनके शरीर पे देखा तो कहीं पे कोई निशान ही नहीं था, कोई निशान नहीं था। और एक बार मध्वाचार्य जी ने कहा कि जब किसी ने चैलेंज किया कि आप भक्ति का प्रचार रोक दो, तो उन्होंने अपनी उंगली ये रखी, उन्होंने कहा ये मेरी उंगली अगर तुम उठा दोगे तो मैं भक्ति का प्रचार रोक दूंगा। तो 30-35 लोगों ने जो है मिलकर मध्वाचार्य जी उंगली उठाने जाई, कोई नहीं उठा पाया। तो ये मध्वाचार्य जी थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल, मतलब फिजिकली बड़े पावरफुल थे वो, वेरी वेरी पावरफुल पर्सनालिटी मध्वाचार्य। तो उनका ना बहुत विशेष है, एक जो जहाज था वो ना समुद्र में फंस गया था, प्रभुपाद जी बता रहे हैं आज़ाद में, समुद्र में फंस गया था ये, और ये इतनी तेज लहरें चल रही थी तो उसमें डोल रहा था। अब ये तो पवन जो है वायु देव खुद ही इनकार्नेशन है ना, तो उन्होंने जो है खींच लिया इसको, जहाज को ही खींच लिया, और जहाज को किनारे पे लेकर आए, और जहाज को किनारे पे लेकर आने के बाद इन्होंने उसको ठहराया, सबको सेव किया। तो सबने कहा कि हम आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। तो इतना बड़ा जो है चंदन का टुकड़ा, वो था गोला, चंदन का गोला, हाँ, तो उसको उन्होंने मुष्टिक पहाड़ से तोड़ दिया, घूसा मार के तोड़ दिया, तो उसमें से जो है उडुपी कृष्ण निकले। या तो उडुपी कृष्ण उनके हाथ में एक तो है भोग पड़ा है और दूसरे हाथ से बांसुरी है, उडुपी कृष्ण। या बहुत सुंदर विग्रह है, पर ये इतने भारी हैं कि इनको मतलब कई, मतलब 30-35 लोग मिलकर नहीं उठा सकते, और मध्वाचार्य ने ऐसे उठा लिया, ऐसे उठाया, इनको लेके गए और एस्टैब्लिश कर दिया। तो आज भी जो उडुपी कृष्ण की जो है पूजा अर्चना होती है,
जो तिरुची के अंदर है वो रामचारी वाले जो है जो लेटे हुए कृष्ण,
हां या
कैसे बिगरे वहीं से आया है,
क्या होता है वैकुंठ, यस यस, वो उनका नाम है रंगनाथ जी,
रंगनाथ,
हां रंगनाथ जी, हां नहीं और वो है श्रीरंगम में, हाँ श्रीरंगम में है रंगनाथ जी, जी पास में, पास में उसके, हाँ वैसे रंगनाथ जी है, रंगनाथ जी, रंगनाथ जी लेटे हुए हैं लाइक दैट। हाँ लेकिन भगवान कृष्ण की भी उन्होंने एक लीला की थी एक्चुअली, कावेरी जो है वो गई रंगनाथ जी के पास, कहते हैं रंगनाथ जी यमुना नदी कितनी सौभाग्यशाली है कि उन्होंने आपका नृत्य देखा, जब आप कालिया के ऊपर नाचे थे तो काली के ऊपर नाचे और यमुना देवी ने जो है दर्शन किए देखो, लेकिन मैं कावेरी, मैं तो इतनी सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि मैं आपको वो नृत्य देख पाती, तो भगवान रंगनाथ जी ने कहा, अरे हम अपने भक्तों को भी निराश नहीं करते। अनंतशेष ने बोला, जैसे ही बलेटते हैं, अनंतशेष काले बन जाओ। अनंतशेष काले बन गए, और उसके बाद फिर रंगनाथ जी उनको नाचे कावेरी में। फिर भगवान अनंतशेष के ऊपर नाचे, उन्होंने कहा लो कावेरी लो, देख लो डांस देख लो जो मैंने उसको किया था। तो भगवान कृष्ण की लीला फिर जो है प्रकट की इस तरह से रंगनाथ जी ने। और रंगनाथ जी को बताया जाता है दैट ही इज एक्चुअली कृष्णा। हाँ, और वहां जो रंगनाथ जी के फॉलोअर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि श्री राम को ना चलने की कलाएं सिखाई रंगनाथ जी ने। जैसे हमने सुना है ना गाना ठुमका चले थे रामचंद्र, राइट, कि श्री राम को चलना जो था वाज वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन श्री राम को ना चलने के स्टाइल सिखाए रंगनाथ जी ने। कुल मिला के 22 तरह के चलने के स्टाइल है श्री राम के, चलने के 22 तरह के स्टाइल्स हैं। हम तो एक ही तरह से चलते हैं ना, लेकिन भगवान चलते हैं 22 स्टाइल्स में। उनमें से कुछ जो है वो गरुड़ वाले स्टाइल है, ही वॉक्स लाइक गरुड़, तो ऐसे ऐसे चलेंगे। तो दो चार कदम हवा में होते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर दो चार हवा में, फिर ऐसे चलना। हमें से कोई चल सकता है ऐसा? कोई चलने कोई करेगा कहेंगे भाई तक गया ये। लेकिन उनका चलना बहुत सुंदर है श्री राम का। लेकिन श्री राम को ये 22 तरह का चलना सिखाया क्षीर सागर से आए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से फिर उसके बाद इक्ष्वाकु संप्रदाय में आए, उसके बाद फिर ये साउथ इंडिया गए, ठीक है। उसके बाद उनको विभीषण जी से मिले, ठीक है। विभीषण जी इनको लेके जा रहे थे लंका, तो इनको जब रास्ते में जहाँ रखना पड़ा बिकॉज ऑफ नेचर कॉल, तो वहीं पर रह गए। लेकिन उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं लंका की ओर देखता रहूँगा, तो लंका से तुम मेरे दर्शन कर सकते हो। तो इनकी इनकी डिटेल स्टोरी है रंगनाथ जी की। उसके बाद फिर ये श्रीरंगा में फिर इंस्टॉल किए गए लाइक दैट। तो रंगनाथ जी का अलग है केस, ये बहुत सुंदर उनकी भी लीलाएं हैं। देखिए मध्वाचार्य शंकराचार्य का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ना मेरे को अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, लेकिन ना मेरे को चुनना है किसको दोस्त बनाऊं, मुझे ना अच्छे लोगों को दोस्त बनाना है, क्या करूं मैं, ठीक है। तो मैं करूंगा माइक पे अनाउंस करूंगा, सुनो है सुनो सुनो सुनो, इस फ्राइडे को दारू पार्टी मेरी तरफ से फ्री, जिसको आना है आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूं वहां होटल रेडिसन ब्लू के पीछे, जो जो दारू पार्टी में आना चाहते हैं, फ्री की दारू, फ्री की फ्री का मांस, जिसको आना है आ जाओ। तो कहेंगे इसमें से 50-60-70% लोग कहेंगे यार यार फ्री की दारू मिल रही है यार, तो क्या वो अलग हो जाएंगे। अब यहां जो बच गए ना, ये बढ़िया वाले कस्टमर। तो एक्चुअली दानवों को जो पुण्यात्माएं हैं उनसे अलग करने के लिए ये ट्रिक थी शंकराचार्य जी की। आओ आओ तुमको तरीका बताता हूं कि हम सब भगवान बन सकते हैं, हम सब एक ही हैं, अलग कर दिया, अलग कर दिया एक्चुअली उन्होंने। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया,
मतलब जो लोग भगवान समझ सकते थे।
हाँ एक्चुअली कम से कम क्या नास्तिक तो नहीं थे ना। जैसे एक आदमी ने एक मैं देखा एक व्यक्ति ना टी शर्ट पे लिखा हुआ था हमारे मंदिर में आते ईस्टर क्रैश में, उसने लिखा था आई वॉज एन एथियस्ट टिल आई रियलाइज दैट आई वॉज गॉड, नाउ आई बिलीव इन गॉड, गॉड एग्जिस्ट बिकॉज आई एम गॉड यू डॉग। सो आई वॉज एन एथियस्ट, मैं नास्तिक था तब तक जब तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं ही भगवान हूं। भगवान है भैया, ऐसे थोड़ी भगवान नहीं है, भगवान है मैं ही हूं। तो इस तरह से क्या है आस्तिकता की ओर लाने का एक षड्यंत्र था वास्तव में, कि भाई हम लोग भगवान के साथ एक हो सकते हैं, हम लोग भगवान बन सकते हैं। तो लेकिन इसके अंदर छुपा एजेंडा क्या है, भगवान है, भगवान है। और उसके बाद फिर और फिर पोल पट्टी खोलेंगे। और शंकराचार्य जी ने जानबूझ के मिस्टेक्स किए हैं अपने अपनी टीका के अंदर, उन्होंने मिस्टेक्स किए जानबूझ के, ताकि आगे जाकर वैष्णव जो है इसके चिथड़े चिथड़े उड़ाएं। जैसे कि उन्होंने अपनी टीका में लिखा है कि मेरे गुरु आए, मेरे मुक्त गुरु आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया ताकि मैं ये शारीरिक का भाष्य लिख सकूं। तो वैष्णव लोग जो है उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे जो जो शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी ने कहा कि उनके गुरु आए, उनके मुक्त गुरु आए, ठीक है, उनको आशीर्वाद देने के लिए। यानी कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना के रखी ना, यानी कि वो एक नहीं हुए। अगर कोई व्यक्ति एक हो जाएगा तो फिर वापस थोड़ी आएगा, तो एक हो गया ना तो गया, तो अब तो मिल गया वो। अब चीनी जब पानी में घुल जाती है तो वापस चीनी कैसे आएगी, तो अगर आए यानी कि वो वहां पर एक नहीं हुए। इस बात का ना मायावादी बस कोई जवाब नहीं करते, यार तो हमारे शंकराचार्य ने गड़बड़ कर दिया यार, हम लोग तो जानबूझ के उन्होंने गलतियां डाली हैं, जानबूझ के गलतियां डाली हैं। जैसे कि सपने की बात आती है, ठीक है, अब ये सपने वाली एक जो एनालॉजी देते हैं शंकराचार्य जी कि असल में देखो जो कुछ हो रहा है ना ये असल में एक सपना है, अल्टीमेटली हम सब निराकार हैं एक, ये शंकराचार्य ने दिया। अब देखो इसके अंदर फ्लॉ है, इसमें फ्लॉ है। देखो एक आम आदमी को बड़ा अच्छा लगेगा, देखो क्या सुंदर बात बोली, असल में ये क्या, ये तो एक सपना है, है तो हम वो निराकारी है असल में। तो मध्वाचार्य जी ने इसको काटा। मध्वाचार्य जी ने कहा सपने में लेकिन हम वो चीजें देखते हैं जो कि हमने असल जिंदगी में देखी हुई है। अगर मैं हम ये लेके चले कि ये सपना है, यानी कि एक ऐसी जिंदगी भी है जहां पर इनका असली रूप है। हम सपने मैंने देखा ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा कि मैं और अर्चित प्रभु हम दोनों नोएडा के मंदिर में इडली डोसा वड़ा सांभर खा रहे हैं, ठीक है, ये मैंने सपना देखा। लेकिन मैंने ऐसा सपना क्यों देखा कि मैं नोएडा के मंदिर में मैं अर्चित प्रभु के साथ बैठ के इडली वड़ा सांभर खा रहा हूं? क्योंकि असल जिंदगी में एक व्यक्ति एग्जिस्ट करता है जिसका नाम अर्चित प्रभु है, और इडली वड़ा सांभर नाम की एक भी एक चीज है, और इस्कॉन नोएडा भी एग्जिस्ट करता है। ये चीज ना मेरे सपने में आई है। तो सपने में वही चीज आती है, सपने वही चीज आती है जो कि एक उसका एक रियल फॉर्म भी होती है। तो ये क्या फ्लॉ है एक्चुअली? शंकराचार्य ने फ्लॉड एग्जांपल्स दिए हैं एक्चुअली, उन सब के अंदर फ्लॉ है। जैसे उन्होंने बोला कि ना जीवात्माएं और कुछ नहीं है, उस निराकार ब्रह्म की परछाई है। हम सब जो है असल में परछाई, जीवात्माएं हैं असल में उस निराकार ब्रह्म की परछाई है। इसके अंदर फ्लॉ है, परछाई उसकी बनती है जिसका रूप होता है। निराकार चीज का तो परछाई बन ही नहीं सकती। तो यानी कि रूप है, भगवान का रूप है, जीवात्मा का रूप है। ये सारे एग्जाम्पल जो है ये फ्लॉड है असल में, ये सब के सब गबड़गोती वाले, ये जान बूझ के दिए उन्होंने। और जो बेवकूफ थे कम दिमाग वाले जो भगवान से दूर रहना चाहते हैं वो, हाँ ये तो बहुत चीज बोली, बहुत चीज बोली। ऐसे उनका एग्जाम्पल देना कि असल में रस्सी जो है हम रस्सी को सांप समझ बैठे हैं, इस तरह से संसार को हम सच मान बैठे हैं, असल में संसार तो मिथ्या है। लेकिन कमिंग बैक टू एग्जाम्पल ऑफ रस्सी एंड सांप, अगर हम रस्सी को सांप समझ बैठे, यानी कि रस्सी भी तो एग्जिस्ट करती ना, नॉट दैट कि रस्सी है ही नहीं, रस्सी को सांप समझ बैठे गलती कर दी, इस अनित्य संसार को नित्य समझ लिया गलती की, लेकिन ये संसार भी है। तो इसी तरह से उनके खुद के एग्जाम्पल फ्लॉड है, गड़बड़ी है उसके अंदर, और जानबूझ के गड़बड़ी की उन्होंने कि आगे जाके पिटाई करेंगे इनका, वैष्णव लोग पिटाई करके इनको ठीक करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। बाद में कुछ जो भक्त लोग होते हैं वो भी लिख देते हैं ना, अब भक्तों में कुछ बोनाफाइड भी होते हैं, कुछ बोनाफाइड होते हैं लेकिन इतने पके हुए नहीं होते, ठीक है। अब जब ओम जय जगदीश हरे अब किसने लिखी है मैंने तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन यह है कि जो लिखी है उसमें क्या है 70% तो ठीक है कि भाई आपका हरि का नाम लेना चाहिए, लेकिन बाद में क्या सुख संपत्ति घरावे भी है, बहुत बड़ा भगवान वो भी दे देना यार, ऐसा नहीं कि अपने को भूखा मारना, ठीक है। तो वोला मिश्रण भी है राइट, तो इस तरह से जो है लिख देते हैं सुख संपत्ति घरावे, तो भक्त का भी मानता नहीं वहां सुख संपत्ति घरावे, हाँ थोड़ा थोड़ा सा ये भी डाल दो या, 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 या। तो इसीलिए इतना की आरती तो होती रहती
है,
इसलिए कह रहे हैं भक्ति करो जमा के। आज का कोट ही है जितने ज्यादा हम भक्ति में बढ़ते आते तो हमें कृष्ण हम हमेशा देख पाएंगे कृष्ण को हर परिस्थिति में। इधर एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है मध्वाचार्य जी का जो मेरे को अभी स्ट्राइक हुआ भाई मर्सी मध्वाचार्य, कि शंकराचार्य कहना है ना कि किस तरह से जब पानी पानी मिल जाता है, ठीक है, एक ग्लास पानी लिया दूसरा ग्लास पानी लिया, जब मिल गया तो क्या हो गया एक, इस तरह से हम लोग जो है ब्रह्म मिलके एक हो जाते हैं। तो इसके अंदर फ्लॉ है। मध्वाचार्य जी कहते हैं देखो अगर आप 1 लीटर पानी लो और 1 लीटर पानी लो और दोनों को मिला दो, अब ये 2 लीटर पानी बन गया। अगर ये एक ही है तो क्या होना चाहिए 1 लीटर प्लस 1 लीटर इक्वल टू 1 लीटर, लेकिन 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी मिलाओ तो 2 लीटर हो जाता है एक्चुअली। तो यही तरीका है फिलोसफी को एक्सप्लेन करने का, कि हम उसी एग्जाम्पल को लें एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी की तरफ से जब किसी ने बोला कि ना देखिए सब रास्ते एक ही हैं, चाहे आप तालाब के इस तरफ से जाओ या तालाब को इस तरफ से आओ या इस तरफ से आओ, सब रास्ते तालाब की ओर ही जाते हैं। प्रभुपाद जी ने इसी एनोलॉजी को एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया कि हाँ एक तालाब है, इसमें आप यहां से भी आ सकते हो, यहां से भी आ सकते हो, यहां से भी आ सकते हो और यहां से भी आ सकते हो, लेकिन इस तरह से हो सकता है आपको पहाड़ मिल जाए रास्ते में, अटक गए। यहां से आते हो सकता है बब्बर शेर पिछले रस्ते में कोई जानवर मिल जाए जो आपको खा जाए तो, और यहां से आप आ रहे हो यहां पर बिच्छू बैठे हुए तो। लेकिन ये एक जो रास्ता है ना, यहां से जो है आप पहुंच सकते हो। हाँ, सारे रास्ते जाते हैं लेकिन सब रास्ते से आप पहुंच नहीं सकते। तो उसी एग्जाम्पल को लेकर चलना, ये ही एक फिलोसफर की असली पहचान होती है। तो मध्वाचार्य जी ने वही किया, उन्हीं एग्जाम्पल्स लिया शंकराचार्य जी के और उसी का जो है सही रूप प्रस्तुत किया। ठीक है, ये भी या कृष्णा इज नॉट मेल एंड राधा रानी इज नॉट फीमेल। ठीक है, कृष्णा इज एनर्जी, सॉरी कृष्णा इज एनर्जेटिक एंड राधा रानी इज एनर्जी। हाँ, जैसे सूरज और सूरज की रोशनी, बताओ मेल कौन फीमेल कौन, है ना? तो मेल फीमेल का पागलपन यहां पर संसार में ही है एक्चुअली। लेकिन लिखने के लिए हम कहते हैं कृष्णा इज सच अ लविंग मास्टर, ही एच ई ही, ठीक है, ही लव्स राधा रानी एंड शी एस एच ई शी लव्स कृष्णा, पर एक्चुअली ही और शी संसार के लिए, लेकिन हमें यूज करना पड़ता है, ये लैंग्वेज की लिमिटेशन है एक्चुअली। बट कृष्णा इज नॉट ही एंड राधा रानी इज नॉट शी, कृष्णा इज बियॉन्ड ही एंड शी, राधा रानी इज ऑल्सो बियॉन्ड ही एंड शी। किसका प्रश्न है, क्या प्रश्न था बताओ?
बेसिकली जैसे हम सुनते हैं भगवद गीता में 4.7 श्लोक जन्म कर्म क्षमतिज्ञ, और जैसे भी ये लीला भी सुनी, तो लीला देखे तो इनकंसीवेबल है पहले स्टार्टिंग से कि 5 वर्ष की आयु में और जो भूत था उसमें, तो उसमें अगर देखे तो अगर देखे डाउट होता है उनके की कैसे हो सकता है, और बताया कि डाउटिंग गोल नहीं उसका विनाश होगा, और साथ में बताते हैं कृष्ण कथा शुद्ध करती है।
इसीलिए भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है ना, उसमें श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। जब हमारा अचिंत्य शक्ति में विश्वास नहीं है तो हम कभी अचिंत्य लीलाओं का चिंतन नहीं कर सकते एक्चुअली। इसलिए अगर देखो ना, चींटी उड़ नहीं सकती जबकि छोटी है, लेकिन कौवा उड़ लेता है जबकि चींटी से भारी है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। नाखून का बढ़ना, इवन ये देखो ये भी एक अचिंत्य शक्ति है। नाखून बढ़ने के लिए वो जोर लगाता है, मैं आज 1 मिलीमीटर आगे बढ़ा, बढ़ गया मेरा नाखून, ऐसा करते नाखून अपने आप बढ़ रहे हैं, खाना अपने आप डाइजेस्ट होता है। इवन ये भी एक अचिंत्य शक्ति है एक्चुअली, अचिंत्य है ये, है ना? आत्मा जो है आंखों के थ्रू देख रही है, ये अचिंत्य है, अचिंत्य है। तो एक्चुअली हम देखें यहां पर बहुत कुछ अचिंत्य है, ये पूरा संसार अचिंत्य है, हम लोग खुद अपने लिए अचिंत्य हैं, हम लोग खुद ही अचिंत्य हैं। हम क्यों किसी ऊपर चिल्ला देते हैं, क्यों किसी को डांट देते हैं, क्यों किसी पे गुस्सा कर देते हैं, हम खुद अपने आप अपने लिए ही अचिंत्य हैं। क्यों बोल दिया ऐसे यार, क्यों चिल्ला दिया मैं यार, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या होता है मेरे को ना, गुस्सा आता है ना पूरा, क्या होता है मैं नहीं रहता। सो हमारे लिए एक्चुअली दिखाया पूरी सृष्टि अचिंत्य है, सब कुछ अचिंत्य हमारे लिए। किस तरह से ये भगवान ने जैसे ये ब्रेन बनाया, अचिंत्य है दिमाग, अचिंत्य है एक्चुअली ये चेतना, ये अचिंत्य है। इसे भगवान गीता बोल रहे हैं, सम पीपल डिस्क्राइब सोल एज अमेजिंग, सम टॉक अबाउट इट एज अमेजिंग, सम लिसन अबाउट इट एज अमेजिंग, बिकॉज इवन सोल इज अमेजिंग। भगवान की सृष्टि भी अमेजिंग है, आत्मा अमेजिंग है। तो आत्मा अमेजिंग है तो परमात्मा या भगवान हो तो सुपर डुपर अमेजिंग है एक्चुअली, बहुत कुछ अमेजिंग है। तो अचिंत्य शक्ति में विश्वास होना, जब तक हमारा भगवान की अचिंत्य शक्ति में विश्वास नहीं है हम भगवान का चिंतन नहीं कर सकते, अचिंत्य शक्ति है। सो इन ऑर्डर टू कंसीव द इनकंसीवेबल पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, वी मस्ट हैव फेथ इन द इनकंसीवेबल पोटेंसी ऑफ कृष्णा। मान लिया कुछ भी कर सकते हैं आज की, ये तो सब कुछ भी कर सकते हैं, अचिंत्य है, अचिंत्य शक्ति है। माय गॉड, अब तो हिंदी भी हमारे तंग है, सोचो जो संस्कृत में लेक्चर दे रहा है, माय गॉड, बहुत जबरदस्त। श्रीपाद मध्वाचार्य जी की जय। श्रीपाद मध्वाचार्य त्रिवासिनी महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
जय।